शांति, ओम शांति। महाराष्ट्र से पधारे सभी महान आत्माओं का, सभी डायमंड्स का इस डायमंड हॉल में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी तो बहुत ही रिफ्रेश हो गए होंगे, हो गए। आज आप सबको हलवा मिलने वाला है। अभी देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, मुख में पानी तो नहीं आ गया। जैसे हलवा खाने से ताकत मिलती है, तो आज आपको हलवे के साथ साथ लॉटरी भी मिलने वाली है। लॉटरी की प्राइस क्या है पता है? क्या होगी? पद्मा पदम भाग्यशाली। पदम जितना कमाई करना चाहते हैं। भाइयों का क्या विचार है? बिजनेस में तो ध्यान रखते हैं ना कि अच्छे से अच्छे कमाई हो, वो बिजनेस करें। क्या रेडी है ये बिजनेस करने के लिए? स्वयं भगवान आए हैं बिजनेस देने के लिए, लेंगे? तो मुरली है ज्ञान रत्नों का बिजनेस। जब हम ज्ञान रत्नों से अपने आप को भरेंगे, बहुत कमाई होगी, बहुत। और माताओं के लिए क्या कहेंगे? माताएं चाबी संभालती है ना, संभाल के रखती है। माताओं के लिए मुरली क्या है? डायमंड की है। कौन सी की मिलेगी? डायमंड की चाहिए, संभाल के रखना। स्वयं भगवान डायमंड की देने आए हैं, तो मुरली है डायमंड की। स्वयं परमात्मा के द्वारा सुनाए गए ईश्वरीय महावाक्य सत्य ज्ञान व श्रीमत, जिसे ज्ञान मुरली कहा जाता है। मुरली माध्यम है जो परमात्मा से मिलाती है। जैसे मुरली यानी बांसुरी सुनने से मन में ताजगी का, आनंद का अनुभव होता है ना, ऐसे ज्ञान मुरली सुनने से आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। आप बहुत रिफ्रेश है, बहुत खुश है, तब क्या होती है? बड़ी बात भी छोटी लगती है। जब आप बहुत खुश है, आप देखना अपने आप को, उस समय आप क्या बोलेंगे? समझो कोई बात आ गई आपके सामने, आप क्या कहेंगे? कोई बड़ी बात नहीं। तो मन को सदा रिफ्रेश रखने की चाबी क्या है? ज्ञान मुरली है। और मुरली क्या है? स्वर्ग का पासपोर्ट। जैसे कोई विदेश जाना चाहते हैं तो उनको क्या लेनी पड़ती है? पासपोर्ट लेनी पड़ती है ना। अगर पासपोर्ट नहीं है तो जा नहीं सकेंगे। इसी तरह स्वयं परमात्मा इस भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं। और स्वर्ग में जाने वाले कौन? स्वर्ग में जाने वाले कौन? आप सभी ना। स्वर्ग माना क्या? पासपोर्ट चाहिए? हमारा अपना जीवन अभी ही स्वर्ग जैसा बन जाएगा। स्वर्ग यानी कि नई दुनिया। परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं नई दुनिया की स्थापना करने, और उस नई दुनिया में सेलेक्शन होगी। बताया ना, सेलेक्शन होगी। तो वो सेलेक्टेड सोल्स कहां बैठे हैं? आप सभी हो ना। स्वयं परमात्मा ने आपको सेलेक्ट किया है, तभी तो आप यहां पधारे हो। तो पासपोर्ट लेना है, तो पासपोर्ट मिलेगी मुरली के माध्यम से। जैसे इसलिए मुरली को संगीत कहा जाता है, जिससे आत्मा इस प्रकार जंकृत हो जाती है, जो सदा के लिए सुख शांति का गीत बजता रहेगा। तो इसलिए मुरली है विश्व शांति का आधार। आज हम चाहते हैं विश्व में शांति हो। विश्व में शांति अगर हम चाहते हैं तो कहां से शुरू करनी होगी? स्वयं से शुरू करनी होगी ना। तो आज आप देख रहे हैं धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता, राज्य सत्ता, अर्थ सत्ता, सभी में असंतुलन है। तो आप अगर देखेंगे, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया कि बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। आत्मा का धर्म क्या है? शांति। इसलिए हम बार बार ओम शांति कहते हैं ना। ओम शांति माना क्या? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो जितना हम उस स्थिति में स्थित होते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा सारा काम, चाहे घर का हो, चाहे बिजनेस का हो, सब काम कैसे होगा? शांति से होगी ना। अगर स्वयं को समझेंगे, मैं तो कितना कुछ करता हूं लेकिन मेरे से हमेशा लोग नाखुश रखते, हमेशा लोग अशांत रहते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है? जितना हम स्वयं शांति में रहेंगे उतना घर में भी और विश्व में भी शांति स्थापन कर सकते हैं। तो परमात्मा ने हमें ये की दी। स्वधर्म ही आधार है धर्म सत्ता का, संतुलन बनाए रखने का। तो जितना स्वधर्म में स्थित होते जाएंगे, जितना स्वराज्य पर हमारा नियंत्रण होगा, उतना ही राज्य सत्ता। हम चाहते हैं संतुलन बना रहे, राज्य सत्ता में भी संतुलन आ जाएगा जब हम स्व पर राज्य करना सीख जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी डॉक्टर कहते हैं भाई आपको डायबिटीज है, आपको स्वीट नहीं लेनी है, लेकिन आपको स्वीट बहुत अच्छी लगती है, बचपन से वो स्वीट आपके मतलब फेवरेट है, तो अभी आपके घर में वो स्वीट बन रहा है, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा चखेंगे ना। बहुत अच्छा लगता हो तो, अगर नहीं अच्छा लगता हो तो क्या कहेंगे? डॉक्टर ने कहा है नहीं खाना है। अगर अच्छा लगता है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा चख लेंगे और एक गोली ले लेंगे। जीभ कितना है? 1.5 इंच का भी नहीं है। उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हम तो चाहते हैं घर में सभी मेरी बात सुने। अगर हम स्व पर राज्य नहीं करेंगे, अगर हम चाहते हैं दूसरा बदले, तो क्या हो गया? आपने देखा होगा आजकल घरों में जब टीवी देखते हैं ना, रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखते हैं। यहां तक कि समझो जैसे आपके पास रिमोट कंट्रोल है और कुकर की सीटी बजी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जाएंगे गैस बंद करने के लिए, लेकिन जाएंगे कैसे? रिमोट कंट्रोल लेते हुए। क्यों? क्योंकि मैं ऑफ करके आऊंगी, उतने में क्या हो जाएगा? चैनल ही बदल जाएगा। तो इसलिए रिमोट कंट्रोल साथ में ही रखते हैं। तो आज हमारा मन का जो रिमोट कंट्रोल है वो कहां है? जैसे अभी आप टीवी सीरियल देखते हैं, वहां कोई रो रहे हैं तो आप भी साथ साथ, कईयों की ऐसी आदत होती है वो भी रोने लग जाते हैं। अगर क्रिकेट चल रहा है, अगर इंडिया हार गई तो क्या हो गया? टीवी को ही तोड़ देते कई लोग तो क्या होता है, अभी हमारे मन का रिमोट कंट्रोल कहां है? अभी हमारा मन का रिमोट कंट्रोल क्रिकेटर के पास है, क्योंकि उसने हमें गुस्सा दिलाया। हाँ, वो जैसा चाहे वो हमें नचा सकते। अगर हम टीवी देख रहे, रो रहे हैं, तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? जो पार्ट बजा रही है रोने का, उसके हाथ में है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, आजकल डोरबेल भी बजता है ना, तो रिमोट कंट्रोल लेके जाएंगे, फिर डोर दरवाजा ओपन होगा। तो अगर आप अपना चैनल देखना चाहते हो, तो आधार क्या है? रिमोट कंट्रोल किसके पास हो? जिसके पास रिमोट कंट्रोल होगी, वो चैनल देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप देखना। अगर समझो आप देखना चाहते हैं रामायण का सीरियल, महाभारत का सीरियल, और आपका बच्चा देखना चाहता है आईपीएल मैच, अगर आप भूल गए एक मिनट के लिए भी रिमोट कंट्रोल, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आईपीएल मैच देखना पड़ेगा। इसलिए जो आप चाहते हो, अगर वो बातें आप देखना चाहते हो आपके जीवन में होते हुए, तो रिमोट कंट्रोल आपके पास रहे, ना कि दूसरों के पास। आज हम क्या कहते हैं, सब कुछ समझते हुए भी हम क्या कहते हैं, बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करूं, मेरा बच्चा होमवर्क ही नहीं करता है, तो गुस्सा तो आएगा ना। वहां तो सुना था हमने, लेकिन यहां तो क्या होगा, प्रैक्टिकल में जब आप जाएंगे तो क्या होगा, बच्चा बहुत तंग कर रहा है, आपकी बात सुनता नहीं है। हाँ, तो अंदर क्या सोचेंगे? अंदर सोचेंगे ये तो सुनता ही नहीं है, और बाहर क्या बोलेंगे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, लेकिन अंदर क्या सोचते हैं, ये तो बहुत तंग करता रहता है। तो ये स्वयं पर राज्य हुआ। स्वयं पर राज्य करना माना, जैसा हम कहे वैसा हमारा मन चले, स्वराज्य। तो विश्व राज्य का आधार क्या है? स्वराज्य। और विज्ञान की सत्ता, तो जितना स्वराज्य पर नियंत्रण होगा, उतना ही राज्य सत्ता का जो संतुलन है वो भी संतुलन में आ जाएगा। विज्ञान सत्ता, तो आप देखते हैं नई नई बातों के इन्वेंशन दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, तो उसका आधार क्या है? अगर किसी साइंटिस्ट से आप पूछे, दिन प्रतिदिन अगर वो उन्नति कर रहा है, तो उसका आधार क्या है? साइलेंस। आप देखेंगे साइंटिस्ट जो है ना, जाकर के कोने में बैठे रहते, रिसर्च करते रहते हैं। तो जितना डेप्थ में जाएंगे, उतना नई नई बातें। तो स्व अनुभूति की सत्ता, जितना हम बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे कहां से? मुरली के द्वारा हमें वो बातें मिलती है कि स्व अनुभूति कैसे करें, स्वधर्म में कैसे टिके, स्वराज्य कैसे करे, ये सारी बातें मुरली के द्वारा आपको मिलेगी। तो अर्थ सत्ता में भी आज कितना असंतुलन है, तो उसके लिए स्वमान में स्थित रहे, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। आज हम चाहते हैं सबसे अच्छा इनकम हो। इनकम के लिए क्या चाहिए? अगर आप अच्छी तरह से कमाना चाहते हैं, तो क्या क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे ना। आप देखेंगे कौन से बिजनेस में अच्छी कमाई हो रही है, फिर आप स्टडी करेंगे या ऐसे ही लग जाएंगे कोई भी बिजनेस में? नहीं, स्टडी करेंगे, फिर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, फिर आप देखेंगे चलो आज मैं अभी ये बिजनेस शुरू करता हूं। तो जितना आप स्वयं रिसर्च करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो बनेगा सोर्स ऑफ इनकम। तो मुरली के माध्यम से हमें सत्ता संतुलन का नॉलेज मिलेगा। इसीलिए मुरली विश्व शांति का आधार है और मुरली मनुष्य से देवता बनाती है। तो आप सब यहां बैठे हो किस लिए? एम एंड ऑब्जेक्ट बताया गया ना, इस विद्यालय में आप आए हो। एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है एम एंड ऑब्जेक्ट? मनुष्य से देवता। देवता यानी दैवी गुणों से संपन्न मनुष्य को, सर्वशक्तियों से संपन्न मनुष्य को ही देवता कहा जाता है। तो क्या मेरे में वो सर्व गुण है, सर्व शक्तियां हैं? चाहे आप लक्ष्मी का ड्रेस ही पहन क्यों ना ले, लेकिन आपको कोई देवी तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो गुण आप में ना हो। भले आप वेश धारण न भी करें, अगर आपके अंदर वो गुण हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे ये तो जैसे लक्ष्मी है, ये तो देवी है। क्यों? किस आधार पर? गुणों के आधार पर। तो वो गुण हमें मिलेंगे मुरली के माध्यम से, और मुरली से नर बनेगा नारायण और नारी बनेगी श्री लक्ष्मी। जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एम एंड ऑब्जेक्ट होती है ना, क्या होती है? मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ने जाएंगे क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो भी जाएगा वो क्या बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे। तो आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हैं तो आप यहां से क्या बनने के लिए आए हैं, क्या बन के जाएंगे? देवी देवताओं जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा मेरा जीवन बन जाएगा। जब मेरा जीवन सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाएगा तो मेरा अपना परिवार स्वर्ग जैसा बनेगा। किसको बेनिफिट होगी? अगर मैं स्वयं को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से श्रृंगार करूंगी तो बेनिफिट किसको होगी? मुझे होगी। मुझे प्लस मैं जिनको चाहती हूं, मेरा अपना परिवार। अगर मैं खुश तो मेरा अपना परिवार भी खुश। तो नर बनेगा नारायण, नारी बनेगी श्री लक्ष्मी। तो मुरली अविनाशी कमाई का आधार है। सर्व खजाने हम जमा कर सकते हैं मुरली के आधार से। मुरली वो ज्ञानामृत है जिसके पीने से हम सदा के लिए स्वस्थ बन जाते हैं। हमारी सारी बुरी आदतें मिट जाएंगी, हमारे विचार सकारात्मक बन जाएंगे, और मुरली वो सात्विक शांति का म्यूजिक है जिसके सुनने से मन एकदम निर्मल और शुद्ध श्रेष्ठ बन जाएगा। और मुरली वो ज्ञान गंगा है जिससे अनेक जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और मुरली वो ज्ञान का प्रकाश है जिससे हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। आप यूं कह सकते हैं मुरली क्या है? जैसे वायरस को भगाने के लिए क्या कहते हैं? एंटीवायरस डालते हैं। तो मुरली हम ये कह सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपलोड करेंगे एवरी डे, तो क्या हो जाएगा? कोई भी वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। आप अच्छी बातें तो सुन रहे हो लेकिन साथ साथ आप ये सोच रहे होंगे क्या करें, कितना कोशिश कर रहे हैं फिर भी मन भटक जाता है। आप देख लीजिए स्थूल में भी आप अगर कोई भी चीज की मास्टरी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कोई भी बात की मास्टरी लेनी होगी। जैसे माताओं को शुरू में खाना बनाना, जैसे आप समझ लीजिए अपने चाइल्डहुड में चले जाइए, शुरू शुरू में जब आपने सीखा होगा खाना कैसे बनाना है, उस समय आपको ऐसा लगा होगा अच्छा ये सब करना पड़ता है, और अभी खाना बनाना कैसे है, इजी है, क्योंकि आप करते 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 आपके लिए अभी इजी हो गया। इसलिए रोज जब हम अध्ययन करेंगे तो सकारात्मक विचार अपने आप हम अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं और मन हमारा शुद्ध बनता जाएगा। तो मुरली वो कमाल की चीज है जो जीवन को बदल देती है। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं क्या हम घर में ही सुने, समझो घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में जाएंगे तो क्या होगा, वहां का माहौल होगा, वहां का वातावरण होगा, संघ होगा, तो परिवर्तन होने में सहज हो जाएगा। तो इसलिए स्कूल जाना जरूरी है ना। आप भी अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल भेजते। क्यों स्कूल भेजते हैं, क्योंकि वहां पर संघ और वातावरण भी होगा, साथ साथ डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सपोज आप घर में बैठे हैं लेकिन कोई आएंगे आपसे मिलने के लिए, और कोई काम याद होगा तो फिर उठना पड़ेगा, तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जब आप स्कूल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन सारी बातों से आप बच जाएंगे। तो इसलिए तो मुरली है, जैसे कि आप स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाई, जिससे आप स्वयं का श्रृंगार करेंगे। जैसे डॉक्टर आजकल कहते हैं ना, कम से कम अच्छी हेल्थ के लिए कितना घंटा सोना जरूरी है, कितना घंटा सोना जरूरी है, कम से कम 6 घंटा, 6 आवर्स। रात को सोने से शरीर को तो रेस्ट मिल जाती है, कर्म इंद्रियों को रेस्ट मिल जाती है, लेकिन मन को, तो अमृत वेला जो है 4 बजे का जो समय, ये है जैसे कि आत्मा रिफ्रेश हो रही है, रिलैक्स हो रही है। ये मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, जैसे मन को आराम मिल जाता है, जैसे शरीर को आराम मिल जाता है सोने से, इसी तरह रोज अगर हम अमृत वेला करेंगे तो मन रिलैक्स होता जाएगा। तो आप में से कितने लोगों ने आज अमृत वेला किया, बहुत कम ना? क्यों, जब तक हमें रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक परिवर्तन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो जब महत्व का पता हो जाता है, जब कोई बात रियलाइज हो जाती है, डाकू भी परिवर्तन हो जाता है। तो रियलाइजेशन की देरी है, परिवर्तन के लिए यू आर जस्ट 1 थॉट बिहाइंड। जिस समय रियलाइज हो जाती है कोई बात तो चेंज इमीडिएट हो जाती है। तो इसीलिए अमृत वेला यानी कि अमृत पीने की वेला कहते हैं। अमृत पीने से अमर बन जाते, अमर माना ऐसे नहीं कि शरीर नहीं छोड़ेंगे, अमर माना सारे दिन में आप एकदम एक्टिव रहेंगे। जैसे कई बार हो जाता है ना, सुबह तो बहुत अच्छा समय हो गया लेकिन दोपहर तक क्या हो जाता है, चेहरा कैसा हो जाता है, कोई कहते हैं क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों ऐसा पीला पड़ गया, है ना? तो लाइवली नहीं रहते हैं। तो जैसे अगर हम सदा एक्टिव अलर्ट रहना चाहते हैं, अट्रैक्टिव रहना चाहते हैं अपने कारोबार में, तो अमृत वेला जितना उसके ऊपर ध्यान होगा हमारा, तो बाकी सब बातें अपने आप ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा। जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट आपको समय देते हैं, ठीक है मुझे रात को 12 बजे मिलने आ जाना, तो आप जाएंगे या सोचेंगे कौन जाएगा 12 बजे, अभी तो मुझे नींद करनी है, ऐसा सोचेंगे या जाएंगे? जाएंगे ना। क्यों? किसके साथ हमारा कनेक्शन होने वाला है? प्रेसिडेंट के साथ। अभी जो अमृत वेले का ये जो समय है 4 बजे का, ये किसने दिया है? स्वयं भगवान ने, जिनको हम अनेक जन्मों से ढूंढ रहे थे, उन्होंने हमें समय दिया है। तो 4 बजे का अपॉइंटमेंट स्वीकार है? जो करेंगे वो हाथ उठाए कृपया। ठीक, बहुत अच्छे। और जो नहीं करेंगे उनका क्या? नहीं तो हमारा समय कहां जाएगा? परिस्थितियों में हमारा टाइम वेस्ट होता जाएगा, क्योंकि अगर मन को आराम नहीं मिला, मन अशांत है, तो हम वहां जाएंगे तो कैसा मन लेकर जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अपसेट है ऑफिस में, तो आप जाते घर और जाते ही समझो आपका छोटा सा बच्चा आपसे मिलने आ रहा है, तो क्या कहेंगे? बहुत अपसेट हो आप अंदर से, जैसे आपको निकाल दिया गया ऑफिस से, तो उस समय आप क्या कहेंगे? घर में जाते ही ले जाओ इस बच्चे को, ये भी डिस्टर्ब कर रहा है ना। अगर आपका मन अच्छा होगा तो आपको प्रमोशन मिल गई और आप घर जाएंगे, तब आप उस बच्चे से कैसे मिलेंगे? खुशी से मिलेंगे ना। तो हम जो देना चाहते हैं परिवार को, वो कब दे पाएंगे? जब हमारा मन खुश और मन शांत होगा, तभी दे पाएंगे। और मन की खुशी बनाए रखने के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम है? हम सारे दिन की दिनचर्या तो बना लेते हैं, यहां जाना है, वहां जाना है, वो काम है, ये काम है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मन को आराम देने का कोई प्रोग्राम है? तो आज से देना, फिर देखना। जैसे जब मैरिज होती है ना, तो पति पत्नी के बीच में क्या होता है? एक रिश्ता जुड़ता है। किस आधार पर? प्रॉमिस के आधार पर। हमेशा हम साथ रहेंगे, साथ देंगे एक दूसरे को। आप समझ लीजिए, आप यहां हैं और आपके पति दूसरे जगह पर है, तो क्या होगा? अगर आपको कोई दिक्कत हो गई, आप जहां पर है, तो क्या वो पहुंच पाएंगे? आ सकते हैं? तो परमात्मा हमें साथ देने के लिए रेडी है। क्या हम साथ लेने के लिए रेडी है? परमात्मा का ये वायदा है, मैं गारंटी करता हूं, अगर तुम मेरी मत पर चलोगे तो रक्षा करना मेरा काम है। बुलाओ खुदा दोस्त को, शिव बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, अब मेरे साथ निभाओ, आ जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब आप उनकी बात मानेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनसे मोहब्बत होता है ना, सब आप समझ लीजिए, सपोज आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वो देरी से आते हैं या ऐसे टाइम पर आते हैं जब आप सोए हुए होते हैं, तो क्या कहेंगे? बाद में मिलूंगे ऐसा कहेंगे या तुरंत उठकर मिलने लगेंगे? तुरंत उठेंगे ना, क्योंकि आपका स्नेह है उनसे। तो इसी तरह परमात्मा से अगर हम स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा से स्नेह करना होगा, प्यार करना होगा। तो प्यार का समय कौन सा है? अमृत वेले का समय। इसीलिए कहते हैं भारत में रात को पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? पेड़ पौधे सो जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना, रात को कोई तोड़ते नहीं। वैसे साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो रात को क्या हो जाता है, पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और सुबह के समय फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसलिए क्या कहते हैं बच्चों को भी हम क्या कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो। क्यों? सुबह अब्सॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है जिससे हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है, हम सशक्त हो सकते हैं। तो अगर सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो 4 बजे उठना है, प्यार से उठना है, मोहब्बत से उठना है। ऐसा नहीं कि अरे क्या करें उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं, प्यार से। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं एक तो आराम करते हैं और दूसरा किस बात पर ध्यान रखना होगा, एक्सरसाइज। वैसे तो आपको जल्दी उठने की आदत नहीं थी लेकिन जब से डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, तब से क्या हो गया, तब से आप जल्दी उठने लगे ना। अगर हार्ट पेशेंट कहता है क्या करे डॉक्टर, मैं उठना तो चाहता हूं लेकिन क्या करूं, तो डॉक्टर क्या कहेगा, तुम्हारी मर्जी। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत एक कदम का आपके तरफ से, फिर हजार कदमों से हजार गुना मदद परमात्मा देने के लिए तैयार बैठे, आए हैं हमें मदद करने के लिए तो मदद लेनी होगी। जैसे शुरुआत में एक्सरसाइज करना शुरू करते तब थोड़ा दर्द भी होगा लेकिन करते करते क्या हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। फिर अगर समझो एक दिन भी मिस होगा तो क्या लगेगा, नहीं नहीं आज मैंने बहुत मिस किया। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा हर सेशन के बाद, हर सत्र के बाद आपको कमेंट्री के द्वारा योग कराया जाता था क्योंकि मन हिरा हुआ है नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत पड़ी हुई है मन को। अब सडनली आपने देखा होगा आप पॉजिटिव थिंकिंग दे रहे हैं लेकिन फिर भी मन भाग जाता है, फिर आप ले आते हैं मन को, तो देनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा, पॉजिटिव थिंकिंग देनी पड़ेगी। तो मन का एक्सरसाइज यानी कि जब आप अमृत वेला योग करेंगे तो परमात्मा के साथ दिल का वार्तालाप करनी होगी। जैसे एक बार चर्च में पोप प्रेयर पढ़ रहे थे, जब वो प्रेयर पढ़ रहे थे एक छोटा सा बच्चा वहां था वो भी खड़ा हो गया और वो देख रहा था कि पोप प्रेयर पढ़ रहे हैं तो वो भी कुछ कुछ बोलने लगा। तो जैसे वो बोल रहे थे ये भी जैसे वो ही नकल कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा ये क्यों मुझे कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद पोप ने पूछा जब प्रेयर पूरी हो गई तुम क्या कर रहे थे, तो बच्चे ने पूछा आप क्या कर रहे थे, तो बोला मैं तो प्रेयर कर रहा था, लेकिन तुम क्या कर रहे थे, बोला मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो बोला बताओ प्रेयर में क्या बोल रहे थे, तो बच्चे ने पूछा आप बताइए आप क्या कर रहे थे प्रेयर में, तो बोला मैं तो प्रेयर कर रहा था, तो प्रेयर बताया। तो फिर उन्होंने पूछा आप बताओ आप क्या कर रहे थे, मैं तो ABCD बोल रहा था, तो आप बताओ परमात्मा किसको प्यार करेंगे, पोप को या बच्चे को। और उन्होंने कहा बच्चे ने मैं तो ABCD बोल रहा था और भगवान को कह रहा था आप ही जोड़ लीजिए कुछ शब्द, जो भी आपको बनाना है आप खुद ही बना लीजिए। तो प्यार किसको मिला होगा, किसको मिला होगा, सब कह रहे बच्चे को। तो परमात्मा से बात करने के लिए कोई फिक्स्ड सेंटेंसेस नहीं है, ये दिल का संबंध है। जैसे पिता से हम कोई फिक्स्ड सेंटेंसेस में बात नहीं करते हैं, जब रिश्ता जुड़ जाता है तो बात करना सहज हो जाता है। तो स्वयं भगवान मेरे पिता है, तो पिता से क्या बात करें? अपने दिल की बातें, जो भी आपके दिल में है वो आप बाबा से शेयर कर सकते हैं। तो मन की एक्सरसाइज की बात आपको सिखाई गई, कैसे हर सेशन के बाद उस पर ध्यान देना। तो इसलिए यहां पर ट्रैफिक कंट्रोल गीत बजते हैं, आप जानते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग। ट्रैफिक कंट्रोल माना जैसे पुलिसमैन खड़ा हो जाता है ना, बहुत ट्रैफिक चल रहा होगा तो क्या करेगा, बताएगा ना, डायरेक्शन बताएगा। तो इसी तरह मन में क्या होता है, ट्रैफिक चलता ही रहता है, कहीं तो उसको चैनलाइज करनी होगी ना। तो हर घंटे में 2 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट भी आप मन को कहना कि अब आप इस बारे में सोचो, किस बारे में, स्वयं को देखो, स्वयं से रिश्ता जोड़ो और परमात्मा से रिश्ता जोड़ो। तो हर घंटे में 1, 2, 3 मिनट अगर हम टाइम सेट करें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, वो हमें बहुत लाभदायक रहेगा। और अगर हम अच्छी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं तो और किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, भोजन का, क्योंकि जैसा भोजन हम स्वीकार करेंगे वैसा एनर्जी हमारे अंदर बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह सुबह कोई फास्ट फूड लेंगे, पकोड़ा, पिज्जा या जो भी भारी जो भी भोजन है वो सुबह सुबह खाएंगे, कहेंगे लाइट चाहिए। जैसा भोजन होगा वैसी एनर्जी बनेगी। हैवी भोजन लेंगे तो अंदर हैवीनेस आएगी, लाइट भोजन लेंगे तो अंदर लाइटनेस आएगी। तो मन का भोजन कौन सा हम देते हैं? जैसे अगर आपको कोई कहे चलो मैंने फ्रिज में बहुत अच्छी चीज आपके लिए रखा है लेकिन 1 मास से रखा हुआ है आपके इंतजार में, तो आप खाएंगे 1 मास से रखा हुआ चीज लेंगे? भले कितना ही प्यार क्यों ना हो फिर भी 1 साल 1 मास या कल का भी हम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर हमें एक बात याद आती है, एक बार जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे प्रोफेसर ने 5 बच्चों को बुलाया और कहा ठीक है यहां पर 5 मग्स रखे हुए हैं आप पकड़ के खड़े हो जाओ। तो सभी बच्चे ने ऐसे ही किया जैसे प्रोफेसर ने बताया। 10 मिनट हुआ उसके बाद भी प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या होता होगा बच्चों को क्या होता होगा, दर्द होता होगा ना। तो लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि प्रोफेसर को कहे कि भाई हमें दर्द हो रहा है। फिर किसी ने हिम्मत की और प्रोफेसर से बोला हमें कितने समय तक इसको पकड़ के रखनी होगी। तो प्रोफेसर ने पूछा क्या मग की वेट बढ़ गई? क्या बढ़ गई? मग तो उतना ही है जितना है, लेकिन क्या हो गया, जितना समय हम कोई भी बात को पकड़ के रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए अगर कोई आपको बहुत इंसल्ट करते हैं सबके बीच में बुलाकर, तो मैं अगर आपको पूछूं कितना समय लगेगा आपको उसको भूलने में, तो आप क्या बताएंगे, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तुरंत भूल जाएंगे? जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा तो क्या होगा, वो ही बात याद आएगी। लेकिन हमें ये समझना होगा जितना देर हम पकड़ के रखेंगे उतना दर्द बढ़ता जाएगा। कोई भी ये रूल है, कोई भी बात को हम जितनी देर तक पकड़ के रखेंगे उतना दर्द बढ़ता जाएगा। फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम भूलना नहीं चाहते उस बात को, लेकिन मुरली जब हम सुनेंगे तो जब हम अपने आप को ऐसा ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं, जब आप जो भी बातें आप सुन रहे थे 3 दिनों से, वो बातें आई कहां से? मुरलियों से। जितनी भी बातें आपने सुनी ये कहां से निकली है? मुरली से। तो मुरली हमें सिखाती है किस तरह जीवन जीना है। लेट गो करो। कोई भी बात को जितने देर तक पकड़ के रखेंगे उतना दर्द होगा, तो इसलिए क्या करो? मन को सशक्त करने के लिए श्रेष्ठ चिंतन वो है मुरली। जितना श्रेष्ठ चिंतन देंगे उतना ही परिवर्तन सहज है। जैसे आपको ये प्रश्न मन में उठता होगा, हमें कितने समय तक ये करनी होगी ऐसे, और कब परिवर्तन होगा, ये होगा या नहीं होगा? सपोज आप समझ लीजिए एक छोटी सी पॉट है और वो पॉट फिक्स है और उसमें एक छोटी सी होल है और वो जो पॉट है उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। अगर मुझे उसको प्योर वाटर से, शुद्ध पानी से अगर रिप्लेस करनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जितना मैं शुद्ध पानी उसमें भरती जाऊंगी तो जो भी गंदगी है वो ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसी तरह हम जब रोज अध्ययन करेंगे, जैसे आप समझ लीजिए, जब आप अपने बचपन को याद कीजिए, जब आपने ABCD सीखी होगी, हाथ को ट्रेन करने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? कम से कम 3-4 मास तो लगे होंगे ना हाथ को केवल ट्रेन करने में। जितना प्रैक्टिस करना होगा उतना स्टडी भी करनी होगी, स्टडी प्लस प्रैक्टिस दोनों। ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा समझ लिया, परमात्मा समझ लिया, पूरा हो गया, नहीं, स्टडी एंड प्रैक्टिस दोनों करनी होगी, तब परिवर्तन आएगा। तो मुरली हमें सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए राजयोग हमें सिखाता है कैसे हम स्वयं से प्यार से बात करें। अगर आप समझ लीजिए आपके पास समय नहीं है, यहां से जाने के बाद फिर वैसे के वैसा ही हो जाएगा, तो मैं आपको एक उदाहरण सुनाती हूं। जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी ना, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही थी, उस समय क्या हुआ पता है? बच्चे, मैक्सिमम बच्चे डिप्रेशन में चले गए। तो भारत में ये बहुत रिसर्च का प्रोजेक्ट बन गया। अब बच्चे तो बिजनेस नहीं करते हैं, बच्चों को तो जॉब नहीं करनी है, लेकिन बच्चे डिप्रेशन में क्यों चले गए? क्योंकि भले आप प्यार से बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर बहुत टेंशन में रहेंगे तो क्या होगा? वो घर में भी वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी स्प्रेड होती रहेगी। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर होगी। तो इसलिए आपको अपना मन पॉजिटिव, पावरफुल बनानी होगी। तो बनेगी कहां से? बनेगी मुरली से। मुरली हमारा फर्स्ट कनेक्शन है परमात्मा के साथ। मुरली है श्रेष्ठ चिंतन, भोजन है मन का, जिससे मन सशक्त बन जाएगा। भोजन तो रोज करनी पड़ती है ना, रोज करनी है और कितने बार? एक बार से हो जाते हैं? कितने बार? कितने बार? तीन बार। हमको तो आपकी दीदी ने बताया चार बार करते हो, चाय टोली बीच में। तो शरीर को तो खाना खिलाते हो, आप बताइए मन ज्यादा काम करता है या शरीर? अभी आप बैठे हो फिर भी मन चल रहा है, रात को सो जाते हो फिर भी मन चल रहा है, तो ज्यादा काम मन कर रहा है लेकिन मन को भोजन नहीं दे रहा है। तो भोजन ही नहीं देंगे तो मन, थका हुआ मन कैसा काम करेगा? और भोजन भी कैसे देते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप वेट कर रहे हैं कि आपके फ्रेंड आएंगे और आपको मदद करेंगे। तो जब आप वेट कर रहे हैं तो उतने में दूसरे कोई व्यक्ति आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बताएंगे? मैं तो रिसर्च वर्क कर रही हूं। फिर बोलेंगे अच्छा किस बात पर? सब कुछ पूछेंगे। फिर आप ये भी बताएंगे कि मैं तो मेरे फ्रेंड के लिए वेट कर रही हूं, वो जब आएंगे तो मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तब वो व्यक्ति आपसे कहता है कि आप उसके लिए वेट कर रहे हो, उसने तो मेरे पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फेर दिया था। आजकल तो कंपटीशन का जमाना है, चलो आपके फ्रेंड है, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, लेकिन मेरा तो पूरा प्रोजेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। तो जैसे ही वो चले जाते हैं, अभी आप सोच में पड़ गए, तो थोड़ी देर में आप जिसके लिए इंतजार कर रहे थे वो व्यक्ति आपके पास आ जाते हैं। जब वो व्यक्ति आपके पास आ जाते हैं तो आपकी वृत्ति बदल गई होगी या सेम होगी? बदल गई होगी या सेम होगा? थोड़ी सी बदलाव तो हुई होगी ना। आप सोचेंगे अच्छा मैं दूं या नहीं दूं, मेरा भी क्या क्या पता, आजकल तो कंपटीशन का जमाना है, मेरा भी ऐसा हो सकता है। तो एटीट्यूड में परिवर्तन आ गया। तो कहां परिवर्तन आ गया? व्यवहार में परिवर्तन आ गया। फिर आप क्या कहेंगे अगर वो पूछे क्या मैं मदद करूं, तो आप क्या बोलेंगे? रहने दो, कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको बुला लूंगी। क्यों? पहले तो आप सोच रहे थे उनके साथ काम करना है, फ्रेश पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको मिली उससे आपका मन, एटीट्यूड, बिहेवियर सब कुछ बदल गया। तो थॉट्स का आधार क्या है? मन, वाणी, कर्म सबका आधार क्या है? आधार क्या है? इंफॉर्मेशन। तो मुरली है सबसे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। जैसे आप जिस पैटर्न से चल रहे हैं वैसे तो आप चल ही रहे हैं और आपने रिजल्ट भी देखा, लेकिन जब आप मुरली में सुनेंगे जो भी बातें तो आप ट्राई करना शुरू करेंगे ना, आज मैंने मुरली में ये सुना, तो वो बातें आप जब यूज करने लग जाएंगे तो परिवर्तन होना सहज है या नहीं? सहज है ना। तो मुरली है मोस्ट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जिससे मन सशक्त होता जाएगा। मुरली वो रियलाइजेशन लाती है जो बेहोश को होश में ले आती है। तो परमात्मा के द्वारा सुनाए गए महावाक्य, सत्य ज्ञान जिसको मुरली कहते हैं, 1969 में आपने सुना है ना, ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनी? 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार देह छोड़ा, लेकिन 1937 में जब ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, उस समय से जो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा के मुकारविंद के द्वारा जो महावाक्य उच्चारण किए, उसको कहा जाता है साकार मुरली। तो 69 से पहले 5 साल की मुरलियां टाइप होकर के हमें मिलती है, क्योंकि वही अवेलेबल है अभी, तो वो हमें मुरली के रूप में प्राप्त होती है। और मुरली की विशेषता ये है, जितने भी हमारे सेवा केंद्र है, 8500 सेवा केंद्र भारत में और विदेशों में, 130 कंट्रीज में, सब जगह वही मुरली चलेगी, तो इसलिए आपको मिस नहीं होगी, कोई भी बात आप मिस नहीं करेंगे। तो मुरली की विशेषता ये है। और मुरली में डायरेक्ट परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं, ये महसूसता होगी आपको। जैसे प्रेसिडेंट आपसे बात करेंगे तो कितना नशा होगा, आप सबको सुनाएंगे, पता है आज मैं प्रेसिडेंट से मिली थी। तो मुरली जो स्वयं परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं, ये महसूसता आपको होगी। और मुरली की शुरुआत होती है मीठे बच्चे। जब स्वयं परमात्मा मीठे बच्चे कहते हैं, तो ऐसा अपनापन का एहसास होता है, जो पाना था सो पा लिया। और मुरली सुनने की विधि है, परमात्मा शरीरों से बात नहीं करते, आत्माओं से बात करते हैं। मुझ आत्मा को स्वयं परमात्मा ने मीठे बच्चे कहा, तो कितना प्यार भरा हुआ होगा। जैसे आप अपने बच्चों को भी प्यार से समझाएंगे तो मान जाएंगे ना आपकी बात। तो प्यार में परिवर्तन होने की श्रेष्ठ प्रेरणा मिलती है। तो परमात्म प्यार को कभी अनुभव करके देखो, कितना ये सुखदाई बोल है। आज दिन तक जो संबंधों में हमें सुख नहीं मिला, वो सुख ऐसा दिव्य अलौकिक प्यार हमें मुरली के माध्यम से अनुभव होती है। जैसे भले नेहरू जी प्रिजन में थे, लेकिन हर रोज उनको छोटी इंदिरा को पत्र लिखते थे, तो वो इतनी सक्षम बन गई। तो आज मतलब जब उनका कार्यकाल चला, तब उनको कोई हरा नहीं सके। मुरली है प्रेम पत्र, हर रोज हमारे नाम का ये प्रेम पत्र स्वयं भगवान के द्वारा प्राप्त होती है, जिससे हमारा तकदीर 5000 वर्षों के लिए ऐसा बन जाता है जो कोई भी लकीर नहीं लगा सकता। तो स्वयं परमात्मा हमारे तस्वीर, हमारा तकदीर बनाने आए हैं। क्या आपके अपना तकदीर स्वयं परमात्मा के हाथों गढ़ना चाहेंगे? तो वो अभी का ये संगम युग का समय है, ये प्राप्ति आप कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा टेस्ट कराते हैं, साकार मुरली होती कैसी। आप सुनेंगे तो अंदर से आप जैसे नाचना शुरू करेंगे। तो साकार मुरली में पहले हेडिंग होती है, आप अभी जब सुनेंगे, आप ये सोचना, जैसे मीरा प्यार में मस्तानी हो जाती थी, दीवानी हो जाती थी, सब कुछ भूल जाती थी, तो जब आप मुरली सुने, तो आप ये सोचो कि स्वयं परमात्मा केवल मुझ आत्मा से पर्सनली बात कर रहे हैं। इस हॉल में चाहे कितने लोग भी बैठे हुए, कोई उठ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ भी हो, लेकिन कोई उसकी जैसे कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। नशा चढ़ रहा है ना, कौन है हम? मोती चुगने वाले हंस है। तुम्हारी है हंस मंडली। हम किस मंडली में बैठे हैं? हंस मंडली। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। समझ लो, आप ये सुन के जाएंगे और जब आप अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, कोई भी बात आपके सामने आ जाती है तब क्या सोचेंगे? अभी तक तो आप ये सोच रहे थे ठीक है ये तो ऐसे ही है, कितने सारे अवगुण है इसके अंदर। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा मुझे, बच्चे तुम हंस हो। अगर आप इस बात को याद रखेंगे और उसको प्रयोग में लाएंगे अपने दिनचर्या में, तो आपका दिनचर्या कैसे हो जाएगा? आज मुझे किसने कहा? स्वयं परमात्मा ने मुझे बताया कि तुम कौन हो, तुम लकी सितारे हो। आज दिन तक आप समझ रहे थे मैं तो अनलकी हूं, चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर लूं मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। लेकिन आज बाबा ने मुझे क्या बताया, कौन हूं मैं? लकी सितारे। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, जैसे आपको पहले और दूसरे सत्र में बताया गया कि मन का सोचने का स्पीड क्या है, एक मिनट में 25 से 30 संकल्प उत्पन्न हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आप अपने बच्चे को कह रहे हो बहुत अच्छा बेटा है, तुम बहुत अच्छे हो, ये होमवर्क कर लो, और अंदर क्या सोच रहे हो, कितना तंग करता है, सारा टाइम मेरा इसके पीछे ही जाता है। एक मीठा सा सेंटेंस और 5 नेगेटिव संकल्प, तो क्या हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं, परिवर्तन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साउंड एनर्जी से भी थॉट एनर्जी बहुत स्पीडली ट्रेवल करती है। ये हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम बदलेंगे नहीं। तो आज अगर हम अपने को कहें मैं तो हंस हूं, तो मेरा जीवन कैसे बन जाएगा? हंस जैसा। तो अगर मैं सोचती हूं मैं क्या करूं, ये तो ऐसे ही है, अगर मैं उनके अवगुण देखती जाऊंगी तो क्या हो रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश जब होती है तो क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाती है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा चलने के लिए? क्या करना पड़ेगा, कीचड़ में पैर डाल के चलेंगे या बाजू में चलेंगे, क्या करेंगे? दूसरा रास्ता लेंगे ना, तो अवगुण उसका। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया, लेकिन आपके घर वाले ने उन्होंने कहा तुमको तो भोजन बनाना ही नहीं आता है, तुम मेरे मम्मी से सीखो, वो तो बोल के चले गए, और सारा दिन आपका क्या हाल होगा? आप सोचते रहेंगे मैंने तो इतना अच्छा बनाया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, मैं तो काम करती ही रहूंगी, ऐसी ही रहूंगी, ये तो बदलने वाले नहीं। सारा दिन आप क्या सोच रहे हैं, वही वही बातें सोच सोच के क्या हुआ होगा, इतना दर्द लेके पकड़ के उस बात को चल रहे हो, इतना दर्द लेके चल रहे हो तो शाम को क्या होगा, जब वापस घर पर आएंगे तो आप मुंह फुला के बैठे रहेंगे एक जगह पर, आप सोचेंगे आकर के मेरे मुझे सॉरी तो कहे, लेकिन वहां क्या हो गया, उनके मन से वो बात डिलीट हो गई, वो और काम में व्यस्त हो गए, तो आपको सॉरी भी नहीं कहते हैं तो क्या हो जाएगा फिर, फिर तो महाभारत हो जाएगा हा? तो जैसे ही कोई ऐसे विचार आते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी के अवगुण में कीचड़ में मेरी बुद्धि रूपी पैर को मुझे नहीं डालना है। अगर मैंने कीचड़ में पैर डाला तो पैर किसके गंदे होंगे, जिसने डाला, इसी तरह अवगुण उनका, लेकिन मैंने क्या कर लिया, बुद्धि रूपी पैर उनके अवगुण में डाल दिया। लेकिन अभी मुरली के द्वारा परमात्मा में क्या समझा रहे हैं, बच्चे तुम कौन हो, हंस। तो अगर आप ये याद रखेंगे, समझ लो उन्होंने ऐसा कह दिया कि तुम अच्छी नहीं हो, तुमने अच्छा भोजन नहीं बनाया, तो आप क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं, उनका मूड शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन बाबा ने मुझे क्या बताया, मैं तो हंस हूं, हो सकता है मैं अगली बार अच्छी तरह से और अच्छा भोजन बना दूं। तो जब आप अपने आप को हंस समझेंगे तो हंस का काम क्या होता है, भले कोई कुछ भी दे रहा है आप क्या लेंगे, आप अच्छी बातें लेना शुरू करेंगे। तो मुरली है आधार जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो एक हेडिंग होती है मुरली में, उसके बाद प्रश्न उत्तर होता है। बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया, तो स्वयं परमात्मा हमसे पूछ रहे हैं, बाप ने रोशनी दी है, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, क्या है, अभी ड्रामा पूरी हो रही है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है, ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिलेगा। हम कैसे चलते हैं सारे दिन में, ठीक है जो होना होगा हो जाएगा, हो ही होगा, जैसा सोचोगे वैसा ही मिलता रहेगा, लेकिन आज से क्या सोचोगे, मेरा साथी कौन, स्वयं परमात्मा मेरा जीवन साथी है, अभी कैसे, वो मेरे पिता है, ये केवल कहने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है, स्वयं परमात्मा मेरे पिता है, और जब वो पिता मुझे कह रहे हैं और वो मुझे साथ दे रहे हैं तो कोई भी बात मेरी स्थिति को नीचे नहीं ले आ सकती है ना। तो पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है, मन को पवित्र रखना, तन को पवित्र रखना, पवित्र रखने से क्या होगा, सारे विश्व में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। जैसे आपको प्योर फूड अच्छा लगता है ना, सब कुछ प्योर चाहिए, प्योर वाटर, प्योर एयर, सब कुछ प्योर, व्हाई नॉट प्योर जीवन, जीवन भी हमारा प्योर हो। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि सोचो भी कैसे, मन को भी पवित्र कैसे बनाओ, ये ट्रेनिंग हमें मुरली के द्वारा मिल रही है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया, कैसे तीव्र हो जाएगा, वैसे तो डिटेल में बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं जस्ट आपको एक मिसाल देती हूं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, कोई बहुत गुस्सा करते हैं आपके ऊपर, बहुत गुस्सा करते, आप चाहते हैं मैं शांत रहूं, फिर भी क्या हो जाता है, 10 बार तो आप शांत रहते, 20 बार भी शांत रहते, अगर बहुत 50 बार आपके साथ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माताएं मुस्कुरा रही है, क्या ब्लास्ट हो जाएगा है? क्यों होता है ऐसे, क्योंकि हम नाटकशाला नहीं समझते हैं, जिसे बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा है, और अब ये ड्रामा पूरा हो रहा है, ड्रामा में सभी एक्टर्स अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। जैसे ड्रामा में किसी का रावण का रोल होगा, किसी का हीरो का रोल होगा, किसी का कॉमेडी का रोल होगा, तो क्या हम जब नाटक देख रहे होते हैं तो प्रश्न पूछते हैं क्या, तुम रावण का रोल क्यों बजा रहे हो? पूछते हैं या तंग हो जाते हैं? इधर से देखो, रावण जैसा ही है घर में, तंग हो जाते हैं? नाटक समझो, ड्रामा समझो, हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। जब पार्ट समझोगे, ड्रामा समझोगे, तो क्या होगा? क्या होगा? गुस्सा आएगा? आएगा गुस्सा? नहीं, इसका रोल है। अभी ये रावण का पार्ट बजा रहा है, फिर राम का पार्ट बजाएगा। तो सबको एक्टर के रूप में देखना, ये आईना कहां से मिल रहा है? मुरली के द्वारा। तो मुरली तो स्टडी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुरली के द्वारा ही होगा। सिर्फ आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से थोड़ा थोड़ा जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन जब सुनेंगे मुरली तो चढ़ेगा नशा। जितना पिएंगे उतना नशा चढ़ेगा ना। जैसे अगर समझो किसी को नशा चढ़ा हुआ है, तो उनको पूछो आप कहाँ हो, तो क्या बताएंगे? कहाँ है? रास्ते में पड़ा होगा, लेकिन बताएगा क्या? मुस्कुरा रहे हो, जानते हो स्वर्ग में है। तो बाकी सब नशों में है नुकसान, लेकिन इस नारायणी नशे में है कल्याण। तो स्वयं परमात्मा हमें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने आए हैं। तो कहते हैं बच्चे याद रखो, तुम्हारा जीवन साथी कौन? स्वयं भगवान इस धरती पर आ चुके हैं, तो ज्ञान ही आधार है। तो मुरली में एक गीत भी होता है, तू प्यार का सागर है। हमने भक्ति मार्ग में गीत सुना लेकिन अनुभव नहीं किया, लेकिन अभी परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, प्यार का सागर मुरली के द्वारा हमें प्यार दे रहे हैं कि बच्चे तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ कौन है? जैसे बहुत अंधेरा है, अकेले जाने में तो डर लगता है ना। अगर कोई बहुत पहलवान है हमारे साथ तो क्या होगा? कहीं औरों को भी बुलाएंगे, आप भी आ जाओ। तो अभी जिंदगी में आप अकेले नहीं हो, आपका साथी कौन? स्वयं भगवान मेरा पिता बन गया है, मेरा पिता, मेरा फादर। नशा चढ़ रहा है ना। तो उसके बाद मुरली का विस्तार होता है, जिसमें बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चे जानते हैं ना कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर बेहद का बाप समुख बैठकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? जो भी टीचर मुरली पढ़ रहे होंगे वो नहीं सुना रहे हैं, उनके द्वारा सुनाने वाला कौन? मेरे प्यारे पिता मुझसे बात करने आ चुके हैं। कितने लकी सितारे हो तुम, जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी, अब तक क्या कर रहे थे? अगर हम किसी का अवगुण देखते हैं तो हमारा चेहरा कैसा बन जाएगा? बगुले जैसी। बगुला क्या करता है? कीचड़ उठाता है ना। तो अगर हम किसी का अवगुण धारण करेंगे तो क्या बन गए? बगुले बन गए। कोई भी बगुला तो बनना नहीं चाहता है। तो हम बाबा कह रहे बच्चे तुम कौन हो? बगुला नहीं बनना। क्या बनना? हंस बनना। तो बनेंगे ना, याद रखना है। मेरे पिता ने, मेरे फादर ने मुझे क्या सिखाया? तुम कौन हो? हंस। तो इन बातों को हम याद रखेंगे, मुरली की बातों को, तो कोई भी बातें मुश्किल नहीं होगी। तो ये 3 पेज 4 पेज की होती है, लेकिन 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। आज तो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं ना हर बात, तो थोड़ा समय लग रहा है। वैसे तो 45 मिनट्स में पूरा हो जाता है। तो मुरली के अंत में बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। देखिए कितना प्यार मिला, मिला या नहीं मिला। हाँ, अगर आप देखते होंगे घर में, आप जब बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा आपको बच्चे तो नहीं बुलाएंगे ना। हाँ, अभी तो बड़े हो गए, लेकिन बच्चे कहने का हक किसको है? स्वयं परमात्मा को। अगर आप रोज ऐसी मीठी मीठी बातें सुनेंगे, मीठा बच्चा कहा किसने मुझे? स्वयं परमात्मा ने। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो स्वयं भगवान नमस्ते कर रहे, तो हम भी क्या करेंगे? हाँ, सभी करेंगे, सभी कहना रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। हाँ, तो मुरली के अंत में जैसे बाप भी नमस्ते करते हैं तो हम भी रेस्पॉन्ड करेंगे। तो उसके बाद होती है धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे चार पेज की जो मुरली सुनी उसके बाद हाइलाइट्स होती है, जिसमें बाबा कहते हैं, बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बनकर माया से सबको लिबरेट करना है। तो अभी तो आप आर्मी में आ गए ना, आर्मी कमांडर कौन है जान गए ना, तो मेरा साथी कौन जान गए, तो माया क्या है, रावण क्या है। हम हर साल उसको जलाते हैं, लेकिन अंदर का रावण तो जलता नहीं, लेकिन मुरली के माध्यम से हम अंदर की रावण को, अंदर की माया को सदा के लिए भगा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। जो सुना उसके बारे में मक्खन निकालना है, क्या सुना, बाबा ने मुझे क्या कहा, उसके बारे में विचार सागर मंथन करना है। तो एक लास्ट में वरदान होता है। हम भक्ति में एक वरदान प्राप्त करने के लिए तरस रहे थे। जब आप मुरली सुनेंगे ना, हर रोज स्वयं भगवान आपको वरदान देने के लिए आए हैं। तो आज के वरदान में बाबा कहते हैं, बच्चे इस मर जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। तो इसका भी विस्तार है कैसे। अगर समझ लो हम इच्छा रखते हैं कि दूसरा परिवर्तन हो जाए, होगा। हम सोचते हैं अगर ये परिस्थिति बदल गई तो मैं खुश, ये सब चेंज हो जाएंगे तो मैं खुश। इच्छा रखी, हो जाएंगे, बदल जाएंगे दूसरा। समझ लो आपके बॉस आपके ऑफिस में जाते ही बहुत डांटते डांटते डांटते, अगर मैं समझू बॉस बदल जाए तो क्या होगा। मैं इच्छा रखूं कि बॉस ही बॉस को ही बदल दूं तो क्या होगा, क्या होगा पता है ना, आपको ही निकलना होगा वहां से। तो इसी तरह शहर में हंगामे हो रहे हैं तो मैं समझू शहर ही बदल दूं। तो इच्छा मात्रम अविद्या, इसका भी विस्तार है, अभी तो समय का अभाव है, लेकिन आप सुनेंगे एक एक महावाक्य। परिवर्तन कहाँ शुरू करना है, बाहर या अंदर? स्वयं से शुरू करनी होगी, क्योंकि परिस्थितियां तो डे बाय डे बढ़ती जाएगी, बाय वन गेट वन फ्री की तरह। लेकिन अभी हमें क्या बढ़ानी होगी, हमारे आंतरिक शक्तियों को। और आंतरिक शक्तियां बढ़ेगी कहाँ से, मुरली सुनने से। तो डेली मुरली सुनना बहुत ही आवश्यक है। तो मुरली के अंत में स्लोगन होती है, जिनके संस्कार इजी है वो कैसे भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे।
देखिए, अगर आपको चार पेज में कोई भी बात याद नहीं रही लेकिन स्लोगन भी याद रहा, स्लोगन, स्लोली स्लोगन को चलाना, कौन सा स्लोगन? इजी रहना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, इजी माना केयरलेस नहीं, इजी संस्कार। तो जो मोल्ड करेंगे वही बनेंगे गोल्ड। तो परमात्मा हम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं मुरली के द्वारा। तो 1969 के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने साकार देह त्याग किया, उसके बाद ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए। तो बाप समान, शिव पिता के समान फरिश्ता बन गए। तो आज भी जैसे आपने कल के सत्र में सुना, कैसे शिव पिता और ब्रह्मा बाबा दोनों ही संपूर्ण पवित्र आत्माएं गुलजार दादी जी के माध्यम के द्वारा आज भी हमें अव्यक्त पालना दे रहे हैं। तो साकार मुरली में फोर सब्जेक्ट्स पर विशेष प्रकाश रहता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट्स, जैसे पूरा भोजन मिल गया। लेकिन अव्यक्त मुरलियां ज्यादातर आप देखेंगे बहुत ही गहरी होती है, विशेष धारणा के सब्जेक्ट्स पर, योग के सब्जेक्ट्स पर जो बहुत ही डीप होती है, वो अव्यक्त मुरलियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए सेवा केंद्रों पर 6 दिन साकार मुरली चलते हैं और 1 दिन अव्यक्त मुरली, क्योंकि संडे के समय तो फ्री होते हैं, तो इसीलिए अव्यक्त मुरली डीप होने के कारण उस दिन थोड़ा ज्यादा समय लेकर के 1 घंटे के लिए आ जाते हैं तो पूरा क्लियर हो जाता है। तो 6 दिन साकार मुरली और संडे के दिन अव्यक्त मुरली चलती है। तो हम ब्रह्मा बाबा को कहेंगे दादा, क्यों? दादा यानी सिंधी में बड़ा भाई। तो शिव पिता और ब्रह्मा दादा, तो हम कहेंगे बाप दादा। दोनों ही साकार, साकार में हृदय मोहिनी दादी, दादी गुलजार के तन के माध्यम से आज भी हमें अव्यक्त पालना दे रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं मुरली में है जादू, मुरली बजती है कहाँ? मधुबन में, मधुबन, मधु यानी मधुरता का स्थान, बन यानी एकांत तपस्या का स्थान। तो मधुबन में बाजे मुरली। तो जो हमने अभी सुना, भक्ति मार्ग में सुनते आए, मधुबन में बाजे मुरली, हम अनुभव कर सकते हैं। तो अव्यक्त मुरली आपको सुनाएंगे, जस्ट आपको टेस्ट कराएंगे अव्यक्त मुरली होती कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे, अब आप अनुभव करना, मुझ आत्मा से बाप दादा बात कर रहे हैं इस मुरली के माध्यम से। बाबा कहते हैं बच्चे, कभी शक्ल में अंतर नहीं आना चाहिए। क्या होता है अगर कोई हमारे अनुसार कोई बात नहीं होती है तो क्या होता है? फेस चेंज हो जाता है ना। लेकिन मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे चाहे कुछ भी हो, वो झूठ बोल रहा है लेकिन आपका फेस क्यों चेंज हो रहा है? अगर कोई झूठ बोलता है तो क्या हो जाता है? हम भी गुस्से से पूछते हैं ना, क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन बाबा मुरली के द्वारा क्या बता रहे हैं? बाबा कह रहे बच्चे, कभी शक्ल में अंतर नहीं आना चाहिए। जब क्रोध या गुस्सा आता है तो चेहरा लाल हो जाता है ना। सदा चेहरा हर्षित मुख रखो बच्चे। बाबा क्या कह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? बाबा माना पिता, शिव पिता हमें क्या बता रहे हैं ब्रह्मा के मुखारविंद से? बच्चे सदा हर्षित मुख रखो। जैसे आप कहते हैं ना, मेरे बाप ने मुझे सिखाया इसलिए मैं ऐसा हूं, कोई भी बात होती है तो अभी आप हमारा बाप हमें क्या सिखा रहे हैं, बच्चे कैसे रहो, चाहे कोई गुस्सा करे चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन आप कैसे रहो, हर्षित मुख, माना हंसना नहीं, कोई गुस्सा कर रहे तो और ज्यादा गुस्सा करेंगे, हर्षित मुख यानी कि अंदर से डिस्टर्ब नहीं होना। तो गहराई को हमें समझना होगा, इसलिए मैंने बताया कि बहुत डीप होती है। सदा खुश मिजाज रहना, सदा खुश रहना, क्यों, पाना था सो पा लिया। अच्छा, सदा जितना बाप को याद करते हो और दिल से प्यार करते हो तो सभी को आपस में पद्मा गुना प्यार करते हो ना। तो देखो, आपको इतना प्यार मिल रहा है मुरली में, तो फिर आप परिवार में जाएंगे तो वहां भी क्या बांटेंगे, आप प्यार बांटेंगे ना, क्योंकि आप प्यार से भरपूर हो। अब सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अपने आप को कौन से इन्फॉर्मेशन से भर रहे हो, न्यूज़पेपर में आजकल कौन सी बातें होती है ज्यादातर आप जानते हो, अगर ऐसी बातें सुनेंगे ऐसी बातें भरेंगे तो हमारा दिन कैसे बीतेगा। अब सोचो, आप अगर हम रोज मुरली सुनेंगे और ऐसी बातें हम रखेंगे मन में और दिन की शुरुआत मुरली से करेंगे तो हमारा दिन कैसे होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से बनती है हमारे विचार। अभी हम कहते हैं ना, हम विचारों को चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन विचारों का भी आधार क्या है, हम जो इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं। तो इसलिए विचार परिवर्तन होने से विजन परिवर्तन होता है, विजन परिवर्तन होने से फीलिंग्स हमारे परिवर्तन हो जाती हैं, और फीलिंग्स जब परिवर्तन हो जाती है तो हमारा एटीट्यूड, वर्ड्स, बिहेवियर, हमारी आदतें, हमारी पर्सनालिटी बदल जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, क्या हो, मिकी माउस ही बन जाते हो। क्या बन जाते हो, हाँ देखो, मिकी माउस, अपना फेस याद रखना। जब भी आपको गुस्सा आए, बाबा ने क्या सिखाया आज, हाँ मेरा फेस कैसे हो गया मिकी माउस जैसा। तो इस वर्ष मिकी माउस नहीं बनना बच्चे, क्या नहीं बनना, मिकी माउस नहीं बनना। देखो, इतनी प्यार भरी बातें आप सुनेंगे, हाँ सुनकर के जाएंगे, फिर घर वालों से मिलेंगे, आपके बच्चे देख रहे हैं, आप भी स्कूल में जा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी जल्दी उठ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको कहना पड़ेगा उनको, वो क्या करेंगे, वो भी जल्दी उठ जाएंगे, अरे मेरे मम्मी पापा दादा दादी सब स्कूल में जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी जल्दी उठ जाएंगे। आप टीवी देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी टीवी देखेंगे। आप पढ़ाई करेंगे तो वो भी पढ़ाई करेंगे, वो भी जल्दी तैयार हो जाएंगे, तो उनके स्कूल जाने से पहले किसको स्कूल जाना होगा, किसको, हाँ आप सभी को जाएंगे ना, स्कूल तो जाना है ना, हाँ इसलिए डेली, इसलिए मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर समझो 5 मिनट गुस्सा करते हैं तो 2 घंटे की कार्यक्षमता बिगड़ जाती है। अगर आप 5 मिनट योग करेंगे तो क्या होगा, 5 मिनट की जो योग है वो 2 घंटे की कार्यक्षमता को बढ़ा देती है। तो अगर आपने अमृत वेले में 20 मिनट का योग कर लिया और डेली 45 मिनट्स आपने मुरली सुन लिया, अटे स्ट्रेच अप आपने इतना भी कर लिया, तो आप सदा के लिए खुश, सदा आपका जीवन सुख शांति से बीतता रहेगा। मन हो एकाग्र होना मुश्किल है, इजी है ना, अभी तो दिल का रिश्ता जुड़ गया ना परमात्मा से। दिल का रिश्ता जब जुड़ जाता है तो कोई भी बात मेहनत नहीं लगती है, हर बात सहज, संस्कार भी हमारे सहज हो जाएंगे। तो इसलिए हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उससे पहले हमें भी स्कूल जाना होगा। हम स्कूल जाएंगे, वो भी स्कूल जाएंगे, तो हमारे परिवर्तन को देखकर वो भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो इसलिए ईच वन टीच वन। तो अभी आप जा नहीं रहे हो, तो अभी जाकर के क्या करेंगे, फिर से बार बार प्रभु परिवार में पधारेंगे। तो मेहमान बनकर आए थे, अभी क्या बन गए? हाँ, घर के बन गए ना, घर के बच्चे बन गए ना। तो अभी आप सभी जाएंगे वहां पर किस लिए? ईश्वरीय संदेश देने हेतु। सबको परिचय भी देंगे और साथ साथ बीच बीच में हर घंटे में 3 मिनट अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर 3 मिनट बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करें। ट्रैफिक कंट्रोल यानी मन को चैनलाइज करें। 3 बातें याद रखेंगे, एक तो अमृत वेला करना है जाने के बाद, और दूसरी बात क्या है, मुरली रेगुलर सुननी है, और तीसरी बात है कि हर घंटे में 3 मिनट मन को पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज देनी है, परमात्मा के प्यार का अनुभव कराना है, और रात को सोने से पहले भी योग करके सोना है। शिव बाबा गुड नाइट, जैसे रात को सो जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट, और सुबह उठो तो गुड मॉर्निंग शिव बाबा। तो स्वयं परमात्मा आपके साथ है और आपका जीवन कैसा बन जाएगा? सदा खुशहाली से आप अपना जीवन बिता सकते। ओम शांति। अभी हम सभी उस परम पिता से मन ही मन अपने पिता से बात करेंगे और कहेंगे, मेरे मीठे बाबा, मैं आपके कहने अनुसार अपना जीवन बनाऊंगी और मुझे विश्वास हो गया है कि अभी आप मेरे साथ है और मेरे जीवन में कोई भी दुख आए उस दुख को झेलने की शक्ति क्षमता मुझ में आ गई है। आपका लाख लाख शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। मन ही मन वायदा करेंगे कि बाबा, मैं रोज अमृत वेला और आपके ज्ञान मुरली को सुनकर अपने जीवन को दिव्य बनाऊंगी। ओम शांति।
सुन करके मन हर शाम।